أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اچھا، کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے پچھلی کلاس کے بارے میں، کہ کسی کو یاد ہے کہ ہم پچھلی کلاس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر یعنی ایج میں کہاں تک پہنچے تھے؟ ذکر کرنا شروع کیا تھا ہم نے، کلاس کہاں سے شروع کری تھی؟ کلاس تو شروع کری تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، جو نبی علیہ السلام سے تقریباً 2500 ایئرز پہلے کی بات تھی. وہاں سے چلتے 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 پھر نبی علیہ السلام کی ولادت کے وقت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پھر عمریں جب دو سال کے ہوئے تو کیا ہوا، چار سال کے ہوئے تو کیا ہوا، چھ سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہوا، آٹھ سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہوا، ہے نا. یہ ساری چیزیں کرتے کرتے ہم کہاں تک پہنچے تھے آخری کلاس میں؟ شادی تک پہنچے تھے. ابھی شادی کا ذکر تو شروع نہیں کیا تھا، لیکن ایج کیا تھی، عمر کیا تھی اس وقت؟ نہیں، 30 تو نہیں. ہاں، انہوں نے صحیح جواب دیا ہے، 25 ایئرس، 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی. تو ہاں، انہوں نے بھی صحیح کہا ہے 24. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ابھی شادی تک داخل نہیں ہوئے ہیں، شادی سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ ہوگا اراؤنڈ 24 سال کی عمر ہوگی. ٹھیک ہے، تو بات شروع ہوئی تھی پچھلی کلاس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، کہ یہ مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت ہی نیک اور عزت والی خاتون تھیں، اور ان کے پاس مال و دولت بھی بہت تھی، بہت امیر بھی تھیں. ٹھیک ہے، تو ان کے جو ہے نا وہ تجارتی قافلے سفر کیا کرتے تھے، شام کا، یمن کا، ٹھیک ہے، ان کا سامان لے کر کے جاتے تھے. تو یہ ہمیشہ تلاش میں رہتی تھیں کہ کوئی ٹرسٹ وردی سچا شخص ان کو ملے جس کو یہ سامان دے کے بھیجیں. تو انہوں نے جب نبی علیہ السلام کے تذکرے سنے کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، تو انہوں نے پھر سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام دیا جائے. ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر یہ بھی سن لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پھر ڈبل اجرت کے اوپر، یعنی ڈبل پیمنٹ کے اوپر پھر ہائر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیجا سفر کے اوپر، اور میسرہ سے یہ کہا بھی کہ تم آپ ان کی ساری باتیں ماننا اور ان کے مشوروں کے اوپر عمل کرنا، اور پھر واپس آ کر کے نا مجھے سارے حالات بتانا. تو جب اس سفر سے یہ لوگ واپس آئے، اچھا سفر کے بارے میں بھی کافی باتیں ہوئی تھیں کہ وہاں جب پہنچے تو جو ہے وہ نستورہ ایک راہب تھا، کرسچن مونک تھا، ایک نستورہ اس کا نام تھا، اس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور کہا کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو اس نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات یعنی ڈائریکٹلی تو نہیں سنی تھی، لیکن اس تک یہ بات پہنچی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا اس درخت کے پیچھے نبی کے علاوہ اس درخت کے نیچے کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے، تو نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی. پھر ایک اور کوئی اسکالر ٹائپ کا آدمی تھا جو کہ بازار میں نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا، اور اس نے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو ان سے شدید نفرت ہے، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کر رہا تھا. خیر، بالآخر یہ لوگ واپس آئے اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ دو فرشتے سایہ بھی کر رہے تھے، اور یہ ان کو نظر بھی آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نا پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام میسرہ سے حالات پوچھے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ کیسا رہا یہ سارا سفر جو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نا. تو میسرہ نے پھر سب کچھ بتایا کہ جب ہم وہاں پر گئے تھے تو ہم نے ایسے ایسے دیکھا، درخت بھی جھک جاتے تھے اور پتھر بھی جو ہے وہ ایسے سجدہ کرتے تھے، اور پھر نستورہ راہب کے بارے میں بھی بتایا کہ اس نے یہ ساری باتیں کہی تھیں. ٹھیک ہے، اونٹوں کا واقعہ بھی بتایا کہ اونٹ جو ہے وہ چل رہے تھے، بہت ہی بیمار تھے، پھر انہوں نے ان کے اوپر ہاتھ جب رکھا نا تو اونٹ جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو گئے، دوڑنا شروع ہو گئے، تو یہ ساری باتیں بتائیں. تو ان سب باتوں کو سن کر کے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نا بہت حیران ہوئی، اور وہ گئیں اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس. ٹھیک ہے، بلکہ چچا نہیں، اپنے کزن، چچا زاد بھائی تھے وہ، چچا نہیں تھے، चचाजात भाई थे, कजन थे, वरका बिन नौफिल, उनके पास गईं और उनसे ये सारी बातें बताई ना। तो वरका बिन नौफिल, आपको पता है पहले भी हम बात कर चुके हैं उनके बारे में कि ये जो है वो तौरात और इंजील के आलिम थे, स्कॉलर थे ये, अगरचे के अरब थे ऑफकोर्स, लेकिन बहुत से अरब भी जो है ना वो भी कन्वर्ट हो गए थे, कुछ यहूदी बन गए थे, कुछ जो है वो ईसाई बन गए थे। तो वरका बिन नौफिल भी जो है पहले तो यहूदी बने, ठीक है, और उन्होंने यहूदियों की किताबें वगैरह पढ़नी शुरू करी। फिर उसके बाद उनको जब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में समझ में आई बात, तो ये फिर ईसाई बन गए थे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान ले आए थे। तो इनके पास गई और सारी बातें बताई ना, तो वरका बिन नौफिल ने ये बातें सुन करके खदीजतुल कुबरा दानों को जवाब दिया कि खदीजा, अगर ये सारी बातें सच्ची है ना जैसे तुम बता रही हो, तो समझ लो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं, ठीक है। और मुझे ये बात मालूम है कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो आखिरी नबी का इंतजार कर रही है और वो सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं कि जो कि आखिरी नबी के आने के वक्त होनी थी। तो यही उनका जमाना है, ये यकीनन वही नबी है, ठीक है। वरका बिन नौफिल पहले भी बहुत सारी चीजें देख चुके थे, लेकिन ये लोग हर एक को ऐलान तो नहीं करते थे ना, बस पता होता था लोगों को, अंदाजा होता था, तो इनको भी अंदाजा था। अच्छा, फिर खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ना वरका बिन नौफिल की सारी बातें बताने के बाद फिर इन्होंने फैसला किया कि नबी अलैहिस्सलाम से जो है ना फिर मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है ना कि इनकी पहले दो शादियां हो चुकी थी, पहले शौहर का भी इंतकाल हो गया था और दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया था। इनके ऑलरेडी जो है वो कितने बच्चे थे, तीन बच्चे थे इनके ऑलरेडी पिछले शौहरों से। तो ये जो है वो बेवा की जिंदगी गुजार रही थी, विडो की, ठीक है। तो आप सस्लम के बारे में सारी बातें सुन करके ना उन्होंने अपनी एक दोस्त जिनका नाम था नफीसा, ठीक है, उनसे कहा कि आप मेरी तरफ से जाएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना वो मेरी तरफ से ये पैगाम दें कि अगर वो तैयार हो तो मैं उनसे शादी के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो जो नफीसा थी वो आई आप सल्लम के पास और उन्होंने ना ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा, क्योंकि ये तो एक अच्छी बात नहीं लगती है कि भाई कोई औरत खुद से कहे शादी के लिए। तो उन्होंने ना इस तरीके से बात चलाई कि अगर कोई दौलतमंद और नेक औरत जो है ना वो आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप उसको कबूल कर लेंगे। तो आप सल्लम फरमाया कि कौन है ये, तो उन्होंने बताया कि ये खदीजा बिन खुवैलद, ठीक है, वो हैं। तो आप सल्लम ने उनसे फिर इजाज़त दे दी उनको कि अच्छा ठीक है, सही है। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके एक चचा थे हजरत अमर, यानी उनके चचा थे अमर बिन असद, मुसलमान तो ये नहीं थे, इनका नाम था अमर बिन असद। तो उनको फिर कहा कि भाई वो आकर के ना निकाह पढ़ा दें इनका और नबी अलैहि सलाम का, ठीक है। तो इनके चचा आए अमर बिन असद और दूसरी तरफ से नबी अलैहि सलाम जो है वो अपने चचाओं के साथ आए इनके घर पे। आप सलाम के चचा कौन थे, एक तो भाई जुबैर जिनका अक्सर पहले भी जिक्र सुना है और हजरत अबू तालिब जिनके पास रहते थे, ठीक है। तो ये सब आए और फिर किताबों में लिखा है कि गालिबन हजरत अबू तालिब जो आप सल्लम के चचा थे उन्होंने फिर निकाह पढ़ाया और इस निकाह के अंदर ना फिर जो मेहर तय हुआ, मेहर क्या होता है, जब निकाह होता है तो जो मर्द होता है ना वो अपनी होने वाली बीवी को जो है वो कुछ पैसे या कोई चीजें शौहर की तरफ से जो है वो और ये निकाह का ये हिस्सा है, ठीक है। इसके बगैर जो है वो फुकहा के नजदीक निकाह नहीं होता, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मेहर होना जरूरी है। तो उनकी मेहर क्या थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह लिखा है कि 20 ऊंटनियां मेहर में तय करी कि मैं इनको शादी के बाद 20 ऊंटनियां दूंगा, दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वलीमे की दावत हुई और उस दावत में भी आप सल्लम ने एक या दो ऊंट जबा किए। तो वलीमा जो होता है ये भी एक हमारे पास पीसी जो है ना वो शट डाउन हो गया, खैर जाइए जरा पॉज कर दीजिए रिकॉर्डिंग को आप। अच्छा, तो इस तरह से ना आप का हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह से निकाह हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी तकरीब थी ये, कोई इसके अंदर जो है वो बड़े बड़े जो है वो हॉल्स वगैरह रेंट नहीं किए गए, कोई इसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा पैसा खर्च नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है, बस जो शरीयत का तरीका था कि एक किसी ने निकाह पढ़ा दिया और मेहर तय हो गया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो है वो वलीमा हो गया, यही सुन्नत है निकाह की। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है ना, यानी ये कौन सी उम्र थी आपसे सलम की? 25 साल। ठीक है, आप सलम जो है वो 25 साल के थे, और खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो कितने साल की थी? 40 साल की थी। ठीक है, 40 इयर्स की। ठीक है, तो आप सलम की जो पहली शादी थी ना वो कैसे हुई थी कि आप सलम जो है वो 15 साल छोटे थे अपनी वाइफ से। ठीक है ना, पहली बात तो ये इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग कि 15 साल का डिफरेंस था, और वो 15 साल भी ऐसे नहीं कि मर्द जो है वो बड़ा था, शौहर बड़ा था और बीवी छोटी थी, नहीं उल्टा। आजकल तो ये होता है ना कि जी शौहर को बड़ा होना चाहिए और बीवी को छोटा होना चाहिए, और अच्छा खासा जो है वो डिफरेंस होना चाहिए, 10 साल छोटी हो, 15 साल छोटी हो, या कम से कम 6 साल छोटी हो, वरना शादी नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी इसके बिल्कुल बरक्स थी। ठीक है ना, इतना ज्यादा फर्क था। दूसरी बात क्या थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी थी ये किससे हुई थी? ये एक ऐसी औरत से आप ने शादी करी थी कि जो कि 2 मरतबा उनकी शादी पहले हो चुकी थी। ठीक है ना, और वो बेवा हो चुकी थी 2 मरतबा। ठीक है, तो ऐसी औरत के साथ नबी सलाम ने पहली शादी करी थी। ठीक है, और ये शादी जो है वो कितने साल रही? इतना भी हम आज थोड़ा सा आगे की बात भी कर लेते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल कब हुआ था? जब नबी सलाम की उम्र जो है वो 40 हो चुकी थी। नहीं, 40 की उम्र में तो आप सलम को फिर नबूवत मिली थी। ठीक है, जब आप सलम की उम्र जो है ना वो हो चुकी थी अराउंड 53 इयर्स, 53 इयर्स। ठीक है ना, अराउंड 52-53 हो चुकी थी। ठीक है, तो आप सलम जो है वो खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ कितने साल रहे? 28 साल, 28 इयर्स नबी अलैहिस्सलाम खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ रहे। ठीक है, तो खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो 53, जब आप सलम थे 53 के, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की क्लास बन गई है। तो नबी अलैहिस्सलाम और खदीजतुल कुबरा की एज में कितना फर्क था? 15 साल का। ठीक है, 15 इयर्स। अब जब आप सलम जो है वो जब 53 इयर्स के होंगे तो खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला की उम्र कितनी होगी? 68 इयर्स। माशाल्लाह, मैथमेटिशियन बैठे हैं यहाँ भी हर जगह। 68 इयर्स हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह की उम्र थी। 60 इयर्स, 68 इयर्स में जो औरत होती है, कुछ अंदाजा है? दादी अम्मा होती है वो, है ना, नानी अम्मा, दादी अम्मा, और अच्छी खासी वो यानी बूढ़ी हो चुकी होती है। 60 के बाद जो है ना वो औरत बेसिकली अच्छी खासी बूढ़ी नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, मर्द जो है वो, कुछ मर्द जो है वो 70 के बाद बूढ़े नजर आने शुरू होते हैं, कुछ 80 के बाद भी बूढ़े नजर आने शुरू होते हैं। ठीक है, लेकिन औरतों की बुढ़ापा जो नजर आना शुरू हो जाता है 50, 55, 60। तो खदीजतुल कुबरा दातान कितनी होंगी बूढ़ी? 68 इयर्स की उम्र में। उस जमाने में भी ऐसे ही था जैसे कि अभी है, ऐसे नहीं कि उस जमाने में लोग बूढ़े नहीं होते थे और अभी बूढ़े हो जाते हैं, नहीं, उस जमाने में भी बूढ़े होते थे। ठीक है ना, वो जमाना और हमारा जमाना सेम है। ठीक है ना, उस जमाने की एवरेज ईयर 63 इयर्स होती थी, हमारे जमाने की एवरेज ईयर भी 63 इयर्स। ठीक है, बहुत पहले जमाने में एवरेज ईयर कितनी होती थी, यानी लोग नॉर्मली कितने साल जिंदा रहते थे? ज्यादातर लोग नहीं, 1000 इयर्स एवरेज ईयर नहीं होती थी। 1000 इयर्स जो है ना वो एवरेज एज नहीं होती थी। ठीक है, एवरेज एज जो इंसानों की रही है ना सबसे ज्यादा, एवरेज एज कितनी रही है? इन्होंने सही जवाब दिया है, 200-300 इयर्स, बल्कि सही यह है 300-350 इयर्स, 300 से लेके 350 साल तक ये एवरेज एज रही है इंसानों की, मैक्सिमम एवरेज। हाँ, अगर किसी को अल्लाह ताला एक्स्ट्रा एज दे देते दे तो फिर वो 500+ भी होता था, 1000+ भी होता था। हजरत नूह अलैहि सलाम 1000 इयर्स के थे। ठीक है ना, लेकिन वो एक्सेप्शनल थे, उनके जमाने में एवरेज एज 300 इयर्स थी और 350 इयर्स थी। ठीक है, फिर ये कम होती गई, कम होती गई, फिर लोगों की एवरेज एज जो है वो 150 इयर्स हो गई, 100 ईयर्स हो गई, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त इंसानों की एवरेज एज जो है वो कम होकर के 60 ईयर्स हो चुकी थी एवरेज, यानी ज्यादातर लोग 60-65 की उम्र इनकी होगी, ठीक है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ना वो उस वक्त तक अच्छी खासी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त क्या थे, बहुत जवान और ताकतवर थे, 52 ईयर्स आप सल्लम की उम्र थी, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये भी आप ही बताएं, ये सारी बातें आपको क्यों बता रहे हैं जी, यहाँ पे तो माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, तो क्यों बता रहे हैं जी आपको ये सारी बात, यहाँ भी हैं वैसे तो बड़े जी, कोई बता सकता है, अब्दुल्ला भाई, अशरफ भाई, अब्दुलरहमान भाई, क्यों बता रहे हैं आपको, कि उन्होंने इतना कुछ कर दिया इतना कम टाइम में नहीं, शादी की बात हो रही है, बीवी की और शौहर की, तो दुनिया की अचीवमेंट्स की बात थोड़ी हो रही है, कितना सुनना है, नहीं नहीं इसलिए नहीं बता रहे, हम जितने लड़के हैं वो 15 साल बड़ी औरत को नहीं देखेंगे शादी हमने 15 साल बड़ी औरत से करनी है, ये मकसद नहीं है जी, हमने साहब सुनना बता रहे, ये नहीं बता रहे, किस लिए बता रहे, anyone take a guess at it, इसलिए बता रहे हैं कि आपने तो अच्छी तरीके से सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शादियां थी, कितनी औरतों से शादी करी थी, 11 औरतों से शादी करी, ठीक है, 11 आप ससुरम की बीवियां कितनी थी, उम्महातुल मोमिनीन 11 थी, ठीक है, ये के आज के जमाने के स्टैंडर्ड बदल गए, नहीं नहीं इसलिए नहीं बता रहे आपको ये बात, He did not marry any other woman during her life, even when she became old. उस जमाने के स्टैंडर्ड्स अलग थे, नहीं ऐसा भी कोई खास नहीं है, नहीं हाँ ये और बात है कि ईमान वालों के स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं और काफरों के स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है, तो ये बेशक है, लेकिन उस जमाने और इस जमाने के स्टैंडर्ड्स अलग नहीं होते, उस जमाने के अंदर भी ईमान वालों के जो स्टैंडर्ड्स थे आज के जमाने में भी ईमान वालों के वही स्टैंडर्ड्स होते हैं, और उस जमाने में काफिरों के जो स्टैंडर्ड्स थे आज के जमाने में भी काफिरों के वही स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये बात आपने समझ ली, सही है, तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो 11 वाइफ्स वाला मामला है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी औरतों से शादी करी, तो इस एक पॉइंट को जो है ना वो नॉन मुस्लिम्स जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ यूज करते हैं, आप सल्लम के ऊपर ऑब्जेक्शन करने के लिए कि नाउज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को तो हर ये जो इन मुसलमानों के जो प्रॉफिट थे ना इनको तो शादियों के मजे आते थे बहुत, इनको तो शादियां कर करके बड़े मजे लगे हुए थे, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, है ना, ये तो हर वक्त शादियां ही करते रहते थे, है ना, इस तरह से ना ये लोग नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतराज करते हैं, ठीक है, तो हम इसका क्या जवाब देते हैं कि तुम ये नहीं देखते कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी की सारी जवानी का वक्त, जवानी में लोग एंजॉय करते हैं ना, व्हेन दे आर यंग दे वांट टू एंजॉय, है ना, दिल चाहता है ना हर कभी जिम जाएं, कभी क्रिकेट खेलें, कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, है ना, क्योंकि जवान है भाई, है ना, कुछ ना कुछ करना है, ठीक है ना, तो भाई जब लोग जवान होते हैं, यंग होते हैं, तो उस वक्त एंजॉय करना चाहते हैं, वो नाउज़ बिल्लाह जो गंदे लोग होते हैं वो फिर गर्लफ्रेंड्स भी बनाते हैं, बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या इस किस्म के हराम काम भी करते हैं, है ना, चैटिंग कर रहे हैं कभी किसी से, कभी किसी से जो है वैसे बात कर रहे हैं, कभी बहुत ही हराम बुरे गंदे बुरे काम करते हैं, ये सारे काम कब करते हैं, व्हेन दे आर यंग, ठीक है ना, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद तो वैसे ही जो है वो तबीयत भी खराब हो जाती है, हर वक्त बीमार पड़े हुए हैं, कभी कोई दवा खा रहे हैं, कभी कोई दवा खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, फिर कोई थोड़ी एंजॉयमेंट का टाइम रहता है, ठीक है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी एंजॉयमेंट का टाइम जो है वो कैसे स्पेंड किया है, एक विडो से 2 times विडोड औरत के साथ जो कि नबी अलैहिस्सलाम से 15 years ओल्डर थी, और उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहे किसी दूसरी औरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी नहीं करी, है ना, एक औरत सिर्फ खदीजतुल कुबरा से शादी करी, और वो 68 years की होने के बाद जब इस दुनिया से चली गई तो उसके बाद जो है वो नबी अलैहिस्सलाम नीडेड सपोर्ट, तब पहली शादी, तब दूसरी शादी करी, ठीक है ना, हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी, उनसे दूसरी शादी करी थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इतने उम्र के हो चुके थे, और फिर उस वक्त एक मर्द को हेल्प की भी जरूरत होती है घर के अंदर, ठीक है ना, यू कैन नॉट लिव ऑल बाय योरसेल्फ, तो इस तरह से आपसे धर्म की फिर बाकी शादियां हुई थी, और वो सारी शादियां जो हुई थी वो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से और इस्लाम की खातिर हुई थी। ठीक है, कि इस्लाम को किस तरीके से जो है वो डिफरेंट ट्राइब्स के अंदर फैलाया जाए, कैसे जो है वो मुसलमानों को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सिखलाई जा सकें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ मर्दों के तो नबी नहीं थे ना, कि मर्दों को जो है वो मस्जिद में बैठ करके बयान करते रहे और मर्दों को सारी बातें समझ आती रहेंगी। ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम तो औरतों की तरफ भी नबी बना के भेजे गए थे ना, तो अब औरतों के पास तो हर वक्त इस तरीके से बयान करने के टॉपिक्स नहीं होते, मौके नहीं होते जी ना, कि भाई क्लास में बैठे हुए हैं बयान कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, है ना। तो औरतों को कैसी चीजें सिखाई जाएंगी, तो औरतों को सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने ये इंतजाम किया था कि नबी अलैहिस्सलाम की ज्यादा वाइफ्स थी, वो घर के अंदर रह करके आप से औरतों वाले मसाइल सीखा करती थी। ठीक है, औरतों को कैसे रहना चाहिए, औरतों को कैसे जो है वो इबादत करनी है, औरतों ने कैसे जो है वो तहारत हासिल करनी है, औरतों ने कैसे सारे काम करने हैं, तो वो आप से डायरेक्टली सीखती थी ये बीवियां, और फिर ये उम्मत को सिखाती थी, उम्मत की औरतों को सिखाती। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक शादी करी थी, अंटिल ही वाज 53 एंड हिज वाइफ वाज 68 इयर्स ओल्ड, जब उनका इंतकाल हो गया फिर उसके बाद जो है आप की एंजॉयमेंट की उम्र ही खत्म हो चुकी थी, जवानी की उम्र ही खत्म हो चुकी थी, फिर उसके बाद दूसरी शादियां करें। ठीक है, तो शादी का जो टॉपिक था उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं कि इस वक्त आप ससुरम की उम्र जो है ना 25 इयर्स हो चुकी थी। इसके बाद जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ आप ससुरम की जिंदगी में 25 से लेकर के 35 तक जो है, डेफिनेटली और इवेंट्स भी हैं लेकिन फिलहाल हम आपको एक बड़ा इवेंट बता रहे हैं जो कि 35 इयर्स की उम्र में हुआ, जब आप ससुरम 35 साल के हो गए। ठीक है, वो कौन सा इवेंट था? वो था काबतुल्ला की रिकंस्ट्रक्शन का इवेंट। ठीक है, अच्छा हुआ ये कि काबतुल्ला की थोड़ी सी तफसील ये है कि हमें हदीस से ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने जब जमीन बनाई ना, ठीक है ना, ये जमीन और आसमान जब बनाए, ठीक है, शुरू में जो है वो अल्लाह ताला थे और अल्लाह ताला का अर्श था जिसके ऊपर अल्लाह ताला मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने जो है वो आसमान बनाए, ठीक है, ये सेवन हेवंस जिनको कहते हैं, और सेवन हेवंस के अंदर जो है अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन बनाई, ठीक है, जमीन अर्थ जिसको हम कहते हैं, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या चीज बनाई है? सिर्फ एक टुकड़ा बनाया जमीन का, ठीक है, यानी एक छोटा सा पैच जमीन का बनाया। सही है, उस पैच के ऊपर जो है ना वो अल्लाह ताला ने अपना घर बनाया, यानी उस पैच को अल्लाह ताला ने रिजर्व कर दिया कि जी यहां पर जमीन में मेरा घर होगा। ठीक है, अब वो जो छोटा सा एक पैच था ना, वो पैच जो है यानी छोटा सा टुकड़ा जमीन का, यानी इतना तो नहीं था, खैर काफी बड़ा है काबा, उतना बड़ा था, ठीक है, जितना काबा है। अब वो जो पैच था ना जमीन का, वो पैच जो है फिर ग्रो होना शुरू हुआ, वो बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते जो है ना फिर वो पूरी की पूरी ये प्लैनेट अर्थ में की शक्ल में बन गया। ठीक है, लेकिन ये प्लैनेट अर्थ जो है ये शुरू कहां से हुई थी? जहां पे काबा शरीफ है, काबतुल्ला है। ठीक है, जो मेडिकल साइंस थोड़ी बहुत जानते हैं या बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं तो उनको ये बात ज्यादा अच्छी तरह से पता होगी, मुझे तो बस थोड़ा सा याद आ रहा है, मैंने पता नहीं 9th ग्रेड में या 12th ग्रेड में पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी, मैंने ज्यादा बायोलॉजी पढ़ी भी नहीं, मैं तो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में आ गया था। तो उस जमाने में ना हमने एक चीज पढ़ी थी, आप में से किसी को अगर उसका नाम याद हो, समथिंग लाइक क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। हाँ, आपको पता है दही कैसे बनती है, योगर्ट कैसे बनती है? ठीक है, योगर्ट जो होती है ना, दही, ये होता है दूध, सही है, दूध होता है एक्चुअली। दूध के अंदर आप क्या करते हैं, एक छोटा सा जो है ना एक टुकड़ा डाल देते हैं दही का। ठीक है, कहीं और से दही आपको मिल गई, योगर्ट मिल गई, उसका छोटा सा टुकड़ा जो है ना वो आपने दूध के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब वो जो छोटा सा टुकड़ा होता है ना वो क्या होता है, वो छोटा सा टुकड़ा जो होता है वो फिर बाकी दूध को भी जो है वो फर्मेंट करना शुरू कर देता है। एक्चुअली एक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर, बैक्टीरिया, दही बैक्टीरिया बनाता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो होता है ना उस दही के अंदर, वो फिर ग्रो होना शुरू होता है, मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, और फिर वो पूरे के पूरे दूध को जो है वो फर्मेंट कर देता है। और इससे जितना दूध होता है वो सारा का सारा दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तकरीबन ऐसी चीज हुई। ठीक है, कि जैसे काबतुल्ला तो छोटे से पैच से अल्लाह ताला ने बना दिया, अब वो जो फैलना शुरू हुआ तो पूरी की पूरी प्लैनेट अर्थ बन गई इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो था वो अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर अपना घर बनाया, ये इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने बनाया और जिन्नों के लिए बनाया। क्यों? इसलिए कि जमीन अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई है वो कौन है? इंसान और जिन। ठीक है, फरिश्तों के लिए एक घर जो है वो ऑलरेडी बनाया हुआ था अल्लाह ताला ने सातवें आसमान के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? उस घर का नाम याद है किसी को? बैतुल मामूर उस घर का नाम है जो कि सातवें आसमान के ऊपर है। ठीक है, जब नबी अलैहि सलाम मेराज पे तशरीफ ले गए थे ना, तो सातवें आसमान पे जाके हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को देखा, वो इस बैतुल मामूर से टेक लगा के बैठे हुए थे ऐसे करके। ठीक है, तो चूंकि उन्होंने जमीन में एक दफा काबा भी बनाया था तो अल्लाह ताला ने उनको आसमानों वाले काबा के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, वो वहां पे बैठे रहते हैं। खैर, तो इस काबे को फिर अल्लाह ताला ने जो बनाया तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने फिर उसको फरिश्तों के जरिए से बनवाया, इसलिए कि अल्लाह ताला जो काम करते हैं ना इस तरह के, ठीक है, वो सारे के सारे काम फरिश्तों से करवाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इस काबतुल्लाह को किसने बनाया? फरिश्तों ने। ठीक है, फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला ने जन्नत से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अच्छा, जब अल्लाह ताला ने जन्नत से जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को इस निकाल करके जमीन पे भेजा, वो वाकया तो अलग पता होगा सबको, क्या ना, वो जो दरख्त का फल खा लिया था, फिर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में, जन्नत से निकाल दिया था, जमीन में भेज दिया था। तो जमीन में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया था कि तुम यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाओ इसी जगह के ऊपर। ठीक है, तो आदम अलैहिस्सलाम ने वहां पर ना एक जैसे छोटा सा एक होता है गुंबद होता है जैसे मस्जिद का टूम। ठीक है, तो उस तरह का ना डोम डोम जो होता है, तो उस तरह का ना आदम अलैहिस्सलाम ने एक घर सा बना दिया। तो फिर दुनिया में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बैतुल्ला की आदम अलैहिस्सलाम ने करी। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत लंबा अरसा गुजरा, पता नहीं कितने हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स गुजरे, उसके अंदर ये जो है ना ये टूट टूट के खत्म हो गया। ठीक है, जो आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। फिर नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन किसने करी? इसकी सभी को पता है। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस जगह पर आए ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस उनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बता दिया होगा कि ये इसकी बाउंड्रीज हैं, तुम यहाँ पर घर बनाना शुरू करो। उन्होंने फिर वो सारा घर बनाया अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर के। ठीक है, ये थी बैतुल्ला की तीसरी कंस्ट्रक्शन भी इसको कह सकते हैं, या अगर इंसानों के हिसाब से देखी जाए तो दूसरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद जो है वो तीसरी कंस्ट्रक्शन जो है ना, अच्छा, इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो घर बना दिया ना, अब ये घर जो है वो चलता रहा, यानी ये बिल्कुल खत्म नहीं हुआ उसके बाद। हाँ, थोड़ा बहुत टूट जाता था, लोग दोबारा से थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर देते थे। ठीक है, तो ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, थाउजेंड ऑफ ईयर्स फिर गुजर गए और नबी अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया। ठीक है, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये हुआ कि दो वाकयात हुए। एक तो ये हुआ कि इस काबतुल्ला की जो बिल्डिंग इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी ना, तो उसके ऊपर ना लोगों ने फिर बाकायदा चादरें वगैरह भी चढ़ानी शुरू कर दी थी। ठीक है ना, पर्दे चादरें इस तरह के लोग चढ़ा दिया करते थे। ठीक है, तो एक दिन ना एक औरत जो है वो वहां पर ना छोटी सी उसने आग जलाई हुई थी, किसी ने देखा है वो जो ऊद ऊद को जलाते हैं, ऊद की लकड़ियां होती हैं तो उनको जलाते हैं ना, तो उससे खुशबू पैदा होती है और धुआं भी पैदा होता है, वो धुआं जहां जहां जाता है तो उस धुएं के अंदर खुशबू होती है। यार अब लोग काफी उस ऊद को जलाते हैं और उसको सूंघते भी हैं, घर में भी लगता है, राइट। तो इस तरह से एक औरत जो है ना वो ऊद की धूनी जो है ना वो काबतुल्ला को दे रही थी ताकि काबतुल्ला के पर्दों के अंदर भी खुशबू आ जाए। ठीक है, तो इस दौरान ना थोड़ी सी आग की चिंगारियां जो है वो उसके उसमें से आग में से निकली और वो जाकर के ना काबतुल्ला के पर्दों को लग गई और काबतुल्ला के पर्दों के अंदर जो है वो आग लग गई। ठीक है ना, और वो आग इतनी बड़ी कि उसकी जो बिल्डिंग थी जो कि पुराने जमाने की, जाहिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बनाई थी, तो उसके अंदर पत्थर भी लगे हुए थे लेकिन उसके अंदर वो लकड़ी वकड़ी भी थोड़ी सी लगी हुई थी। ठीक है ना, तो लकड़ी ने भी आग पकड़ ली और इस तरह से ना काबतुल्ला की जो इमारत है वो बहुत बुरी तरीके से जो है उससे मुतासर, यानी बिल्कुल खत्म नहीं हुई लेकिन बहुत कमजोर हो गई आग की वजह से ना, कुछ हिस्सा उसका ऐश बन गया होगा। अच्छा, अब ये ऑलरेडी कमजोर हो चुकी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बारिशें हुई मक्का मुकरमा में, ठीक है ना। तो ये जो काबतुल्ला है, ये आपको अंदाजा होगा कि ये बिल्कुल एक डेप्थ की जगह पर है, ठीक है, डिप्रेशन सी है ये, बाकी यानी चारों तरफ जो है वो पहाड़ है और ये गोया के एकदम नीची सी जगह है। तो जब भी बारिश होती है ना, तो पहाड़ों से जो पानी है ना वो आकर के यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है ना। ये हमेशा से होता रहा है, अभी भी इवन ऐसा होता है। अब उन्होंने दूसरी चीजें कर दी हैं कि पानी यहाँ पे जमा ना हो, लेकिन कुछ सालों पहले तक अभी भी होता था यहाँ पर, ठीक है। अब तक की कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी कि जिनके अंदर काबतुल्ला जो है वो पानी में डूबा हुआ है और लोग बाकायदा उसमें स्विम कर रहे हैं, ठीक है, इतना ज्यादा पानी जमा हो गया था, सही है। तो इसी तरह से जो है ना वो सैलाब आ गया काबतुल्ला में, और वो जो ऑलरेडी कमजोर हो चुकी थी ना लकड़ी वगैरह उस आग की वजह से, तो अब जो है ना वो तो टूट ही गई ना बिल्कुल, ठीक है। तो जब इतना बुरा हाल हो गया ना काबतुल्ला का, तो फिर कुरैश ने ये फैसला किया कि अब तो हमें इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, दोबारा से इसकी तामीर करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री। अच्छा, एक और बात इसके अंदर ये है कि ये जो नॉन मुस्लिम्स थे ना, जिन्होंने काबतुल्ला के अंदर जो है वो बहुत सारे बुत भी रख दिए थे, ठीक है, लेकिन ये काबतुल्ला की इज्जत तो बहुत करते थे, ठीक है ना, इसको अल्लाह ताला के घर से ये मानते थे। तो इस वजह से ना इन लोगों का एक कस्टम ये था कि ये अपने ना बहुत सारी चीजें जो है, कपड़े और गोल्ड ऑर्नामेंट्स और हत्ता के तलवारें और जो भी चीज इनके इनके नजदीक जो है ना प्रेशियस होती थी ना, तो अब ना वो काबतुल्ला को ला करके दिया करते थे। गोया कि अल्लाह ताला का घर है तो हम काबतुल्ला के नाम पर इस चीज को कुर्बान कर रहे हैं। तो जानवरों को तो कुर्बान कर देते थे, ठीक है, वो तो यानी उनको ज़बह कर देते थे, लेकिन जो ये चीजें लेकर के आते थे ना, इन चीजों को जो है ना ये काबतुल्ला के अंदर डाल देते थे, ठीक है। अच्छा, काबतुल्ला के अंदर भी इस तरह ही डालते थे कि बाहर से फेंक दिया अंदर, बल्कि दरवाजा था बाकायदा अंदर जाते थे, और काबतुल्ला के अंदर एक कुआं होता था, एक वेल, एक होल सा होता था उसके अंदर, कुआं जिसको कहेंगे उर्दू में। तो वो ना वो सारी चीजें जो है ना वो उसके अंदर डालते रहते थे, उसके अंदर डालते रहते। अब अल्लाह ताला ने उसको पता नहीं कितनी जगह बनाई थी कि वो भरती रहती थी, चीजें भरती रहती थी, ठीक है। तो उसमें अब जाहिर है बड़ी कीमती कीमती चीजें होती थी, क्योंकि लोग किसी ने गोल्ड ला के डाला हुआ है, किसी ने कुछ डाला हुआ है, किसी ने कुछ डाला हुआ है। अच्छा, एक दफा क्या हुआ कि किसी आदमी के ऊपर ना बड़ा शैतान आया कि मैं जरा जाके ना चोरी करता हूँ काबतुल्ला के अंदर से, वो इतना ट्रेजर उसके अंदर पड़ा हुआ है, चलो मैं भी कुछ चुरा लूंगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा। वो चोर जो है ना, जब चोरी करने के लिए काबतुल्ला के अंदर गया ना, तो ऐसा हुआ अल्लाह ताला की तरफ से कि वो फिसल करके ना उस कुएं के अंदर जाके गिर गया और मर गया, ठीक है। बाद में लोगों ने देखा होगा कि भाई ये मरा पड़ा है, तो खैर ये सब कुछ हुआ। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने ना एक सांप को भेज दिया, एक सांप आया, ठीक है, और वो जो है ना उस कुएं के बाहर बैठा रहता था, ठीक है। तो वो गोया के गार्ड करता था उस कुएं को कि कोई आके वहां से चोरी ना करे, ठीक है। तो अब लोग जो है ना बस दूर से चीजें फेंक करके चले जाते थे, सांप से सब डरते थे, ठीक है ना। अब किसी को चोरी करने की हिम्मत नहीं होती थी उस सांप की वजह से, ठीक है। तो ये सांप वाला मामला भी हुआ काबतुल्ला के अंदर, वो भी बैठा रहता था हमेशा। तो जब ये हुआ ना कि इन लोगों ने सैलाब के बाद ये फैसला किया कि हम काबतुल्ला को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो उस वक्त क्या किया अल्लाह ताला ने कि एक परिंदे को, एक बर्ड को भेजा। वो बर्ड आई और उसने उस सांप को जो है ना वो अपनी चोंच में पकड़ करके ले गई वो, ठीक है। ये सारे वाकयात होते थे भाई, अभी भी होते हैं खैर इस तरह के, लेकिन हमें पता नहीं चलते बहुत सारे। खैर, तो वो सांप को ले गई। तो जब कुरैश के लोगों ने ये देखा ना कि हाँ भाई, जो सांप था जिसका हमें डर रहता था वो भी चला गया, तो दिस मस्ट बी अ साइन फ्रॉम अल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इंडिकेशन है कि हम जो सोच रहे थे ना काबतुल्ला को रिकंस्ट्रक्ट करें, तो अल्लाह ताला भी शायद यही चाहते हैं। जब भी अल्लाह ताला ने सांप को हटवा दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब इन लोगों ने ना आपस में फिर मशवरा किया कि जी काबतुल्ला को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है। तो उसमें ना इन्होंने सोचा कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो पत्थरों से बनाया था, तो हम भी पत्थरों से बनाते हैं इसको, ठीक है। तो इन्होंने पहले जो है ना वो काबतुल्ला की जो बची खुची बिल्डिंग रह गई थी ना, थोड़े बहुत पत्थर, थोड़ा बहुत मिट्टी, वो लकड़ी वगैरह, तो उन सबको तोड़ने का फैसला किया, ठीक है। लेकिन डर भी रहे थे बहुत ज्यादा कि भाई अल्लाह का घर है, अगर हमने तोड़ा और अल्लाह ताला नाराज हो गए तो फिर हमारे ऊपर अजाब आ जाएगा, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे। सही है, तो सारे के सारे डर रहे थे। तो उस वक्त जो है ना, वो एक आदमी था वहां पर उन लोगों का, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ कुरैश, उसका नाम था आस बिन वाइल, ठीक है। तो इसने कहा कि अच्छा चलो मैं जो हूं ना ये रिस्क लेता हूँ, ठीक है, अल्लाह का अजाब आएगा ना तो मेरे ऊपर आएगा, मैं रिस्क लेता हूँ। तो उसने जो है ना एक एक उसके पास एक बेलचा या कुदाल टाइप का एक चीज थी, तो उसने जो है ना वो एक स्ट्राइक किया काबतुल्लाह की पत्थरों के ऊपर और एक पत्थर को जैसे तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इसने कुछ नहीं किया, बस इतना किया। और फिर इसके बाद ना वो भी पीछे हट गया और बाकी लोग भी पीछे ही रहे, और उन्होंने सोचा कि भाई हम एक रात इंतजार करते हैं, अगर रात को आस बिन वाइल के ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आया ना तो फिर तो हम कल बाकी इमारत को तोड़ेंगे, और अगर आ गया तो उसका मतलब यह है कि बस ठीक है दूरी, ठीक है। तो पूरा एक रात उन लोगों ने इंतजार करी, आस बिन वाइल को कुछ नहीं हुआ, तो अगले दिन ये लोग आए और उन्होंने कहा अच्छा भी इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला राजी है इस बात से कि हम काबतुल्लाह को तोड़ दें और फिर नया बनाए। तो फिर बाकी लोगों ने तोड़ना शुरू किया, तोड़ते तोड़ते ना ये पहुंचे काबतुल्लाह की बिल्कुल फाउंडेशन, यानी जो जमीन खोद करके थोड़ी सी फाउंडेशन बनाई जाती है, ठीक है, तो वो जो खुद ही भी जमीन के अंदर जो फाउंडेशन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, ठीक है ना, ये तोड़ते तोड़ते उस फाउंडेशन तक पहुंच गए जो जमीन के अंदर। वो किस चीज की बनाई थी, वो किताबों में लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ग्रीन कलर के कुछ पत्थर थे, ठीक है, और उन पत्थरों की शक्ल कैसी थी, वो शक्ल ऐसी थी जैसे कि कैमल का जो हम्प होता है ना, कैमल का जो यानी ऊंट का जो कोहान होता है, ठीक है, ऐसी शक्ल होती है ना, जैसे कुछ लोग टोपी भी इस तरह की पहनते हैं यूं करके, ठीक है, तो वो उस शक्ल के वो पत्थर थे लेकिन ग्रीन कलर के थे, ठीक है। तो वो पूरी फाउंडेशन जो है ना वो उन ग्रीन पत्थरों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई हम पूरी नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो चलो फाउंडेशन को भी जो है वो तोड़ते हैं। तो जब फाउंडेशन को तोड़ते थे ना तो जमीन हिलनी शुरू हो जाती थी, है ना, लाइक एक जैसे एक अर्थ को एक का ट्रिमर आता था, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई ये चलो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इसको छोड़ दो, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई है तो मे बी अल्लाह ताला डज नॉट वांट इट टू बी रिमूव, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने पत्थर जमा करने शुरू किए, पहाड़ से पत्थर लेकर के आते थे और वो इसके ऊपर जमाने शुरू किए। अच्छा, इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि हजरत अब्दुल्ला जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू थे, ठीक है, उनके एक होते थे मामू, सही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला के एक मामू होते थे। तो उन्होंने ना ये कहा सारे कुरैश से कि काबतुल्ला की जो कंस्ट्रक्शन है ना तो इसमें हम जाहिर है कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, खाली पत्थरों से तो नहीं बना सकते ना, पत्थरों को जोड़ने के लिए आपको सीमेंट टाइप की भी कोई चीज चाहिए होती है, तो वो आपको खरीदनी पड़ेगी लोगों से जो सीमेंट बनाते हैं। तो ये जो हम चीजें इस्तेमाल करेंगे ना काबतुल्ला की कंस्ट्रक्शन में, तो ये हम सिर्फ हलाल कमाई से इस्तेमाल करें, हलाल कमाई से खरीदें, ठीक है ना, हराम की कोई कमाई से नहीं खरीदें। हराम की कमाई क्या हो सकती है, हराम की कमाई ये हो सकती है कि जैसे कि आपने किसी के माल के ऊपर कब्जा कर लिया, चोरी कर ली, ठीक है ना, तो अब ये चोरी का जो माल होता है ये हलाल तो नहीं होता ना, ये तो हराम होता है। अगर किसी के पास चोरी का माल है, किसी के माल पे उसने डाका डाला है, कब्जा कर लिया ना, तो वो वाला पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह की जो भी कोई हराम कमाई है वो हम काबतुल्लाह की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हलाल कमाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी काबतुल्लाह की कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, और फिर किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जब ये लोग ना काबतुल्लाह को तोड़ रहे थे तो इनको जो है वो एक कोने से काबतुल्लाह के एक पार्चमेंट सा मिला, जो उस जमाने में लोग जो है ना वो कागज तो नहीं होता था पेपर आजकल की तरह का, तो लोग ना वो लेदर के ऊपर चमड़े के इस तरह की उनके पास चीजें होती थी उस पर लिखा करते थे चीजें, ठीक है। तो उस तरह की एक इनको राइटिंग मिली, एक तहरीर मिली काबतुल्लाह के एक कॉर्नर से, ठीक है, यानी फाउंडेशन में एक जगह पे वो रखी हुई थी। उस तहरीर के ऊपर ना कुछ लिखा हुआ था लेकिन वो अरबिक में नहीं था, वो सुरियानी जुबान में लिखा हुआ था जो कि ज्यूज जानते थे उस जमाने के, सुरियानी जुबान, ठीक है। तो इन्होंने एक ज्यू को तलाश किया, यहूदी को, उसको लेकर के आए, तो उसने इनको ना वो तहरीर पढ़ करके सुनाई। उसके अंदर ये लिखा हुआ था, मैं अल्लाह हूं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से वो एक किसी ने लिखी थी, मैं अल्लाह हूं मक्का का मालिक, जिसको मैंने उस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए, मैंने इसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए से घेर दिया है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय 7 एंजल्स, मक्का मुकरमा। इसकी अजमत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों से मुराद एक तो जबले अबू कैस, जबले अबू कबीस पहाड़ है, जो कि सफा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा जबले कई कान पहाड़ है। कई कान मुश्किल सा नाम है, लेकिन है उस पहाड़ का नाम जबले कई कान, जो मक्का मुकरमा के करीब है, और इसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है, और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफा वाला है। बहरहाल ये उसके अंदर राइटिंग इन लोगों ने पढ़ी। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज है कि ये मक्का मुकरमा बहुत अजमत वाला शहर है। और अच्छा, फिर उनको दो तीन और भी इस तरह की चीजें मिली जिनके ऊपर भी इसी तरह की चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिर ना वो जो पत्थर वगैरह लेकर आए, उन पत्थरों को जो है वो रखना शुरू किया। ठीक है, और उनको जोड़ना शुरू किया। इस तरह से इन्होंने दीवारें तो बना दी। ठीक है, अब जब दीवारें बना दी तो अब दीवारों के ऊपर बारी आई, अब जो है ना उन्होंने सोचा कि भी इसको छत भी हमें डालनी चाहिए। पहले इसकी छत नहीं होती थी, ठीक है ना, बगैर रूफ के होता था, लोग आकर के ऐसी चीजें डाल देते थे उसके अंदर। अब इन्होंने कहा नहीं, अब बस हो गया, बहुत हो गया, अब लोग इस तरह से नहीं फेंक सकते चीजें, अब हम एक छत भी बनाएंगे। लेकिन छत जो है वो पत्थरों से तो ऐसे नहीं बना सकते ना, एक पत्थर रखेंगे नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना, तो छत के लिए तो आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि पूरा ऑल द वे ना, तो उसके लिए लकड़ी की, लंबी लंबी लकड़ियों की, और वो इनके पास थी नहीं। तो फिर ये लकड़ी कहाँ से मिली? अल्लाह ताला की तरफ से इंतजाम होना, भाई अल्लाह का घर बन रहा था तो अल्लाह ने इंतजाम करना था। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये मामला हुआ कि जो जद्दा का पोर्ट है ना, जद्दा पता है सबको, सऊदी अरब का दूसरा बड़ा शहर या पहला बड़ा शहर जद्दा। ठीक है, तो जद्दा का बाकायदा एक पोर्ट है, सी पोर्ट, वहां पे उस जमाने में भी जो है ना वो शिप्स आते थे। ठीक है, और वो यहाँ से रेड सी क्रॉस करके जो है वो इंडिया की तरफ भी जाते थे। ठीक है, फिर यहाँ से वापस तरफ मिस्र की तरफ जाते थे। तो एक जो है ना वो शिप आ रहा था, जो कि लिखा हुआ है कि वो शिप जो था ना वो था रोमन एम्परर का, उसका सामान लेकर के जा रहा था। ठीक है, अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि वो शिप जो है ना वो रेक हो गया यहाँ पर आकर। यानी होता है कि इस तरह भी अक्सर होता है कि जो समंदर का साहिल होता है ना, तो वहां पर कुछ चट्टानें होती हैं समंदर के अंदर, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो पत्थर नजर भी आ रहे होते हैं बाहर से, और कभी होता है कि पानी इतना ज्यादा आ जाता है कि पत्थर छुप जाते हैं। ठीक है ना, तो पुराने जमाने में उनके पास रेडार्स और सोनार इस तरह की तो चीजें होती नहीं थी जो कि पता कर सके कि आगे रास्ता साफ है कि नहीं है, तो वो बस ऐसे ही चला रहे होते थे देख करके। तो वो जो शिप चल रहा था ना, तो पत्थर नीचे मौजूद था, वो उसके चलाने वालों को नजर नहीं आया, तो शिप उससे टकरा गया। ठीक है, जब टकरा जाता है ना शिप से, तो टूट जाता है। उस जमाने में तो वैसे भी लकड़ी के बने हुए शिप होते थे, आज के जो सॉलिड स्टील के बने हुए शिप होते हैं ना वो भी टूट जाते हैं अगर कभी इस तरह से टकरा जाए किसी पत्थर से। अच्छा, तो वो शिप जो है ना वो टूट गया, इसको कहते हैं शिप रैक। ठीक है, अब वो शिप टूटा तो उसके जो भी टूटने के जो हिस्से थे ना, यानी लकड़ी वकड़ी जो कुछ उसके अंदर था, वो सारा फिर पानी की जो वेव्स थी, मौजें थी, उनके साथ बह बह करके सारा। कुरैश को पता चला कि अच्छा इस तरीके से एक शिपरेक हो गया है, और उसमें से बहुत सारी लकड़ी जो है ना वो जद्दा के साहिल के ऊपर मौजूद है। तो इनमें से एक शायद आस बिन वाइल ही गया, और उसने जो है ना वहां पर उन लोगों से इस लकड़ी को खरीद लिया, और उस लकड़ी को ले करके किसी तरीके से ऊंटों ऊंटों के ऊपर वो मक्का मुकरमा आया, और इस लकड़ी से इन्होंने फिर काबतुल्ला की छत बना दी। ठीक है, तो इस तरह से काबतुल्ला की कंस्ट्रक्शन जो है वो मुकम्मल हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, बड़ा मशहूर वाकया हुआ जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या हुआ? हाँ, हजरे अस्वद वाला वाकया। ठीक है, कि भाई काबतुल्ला के, आपको पता ही है कि एक कॉर्नर के ऊपर हजरे अस्वद नस्तब है। ठीक है, जो कि जन्नत का पत्थर है, और इसको सब जो है वो जाकर के फिर वो बोसा भी देते हैं। ठीक है, तो जाहिर कंस्ट्रक्शन के वक्त जो है वो हजरे अस्वद को वहां से निकाल लिया गया था, और अब जो है ना उसको दोबारा उसके मुकाम पे लगाना था, ठीक है ना। अब मसला ये हुआ कि ये हजरे अस्वद जो है ना ये कौन लगाएगा, ठीक है ना। कुरैश में कोई एक लीडर तो था नहीं, बहुत सारे ट्राइब्स थे, छोटे 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 ट्राइब्स, और सबके अपने अपने लीडर थे, ठीक है। तो अब हर कोई ये चाहता था कि जन्नत का पत्थर तो मैं, हमारे लीडर को लगाना चाहिए, ठीक है। तो लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है ना। वो उन्होंने जो है ना वो कसमें खा ली कि नहीं मैं लगाऊंगा, ऐसी की तैसी मैं लगाऊंगा, है ना। तो हम जो है वो लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपना हक जो है वो नहीं किसी और को नहीं देंगे, इस तरह की बातें सारी उन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। तो बकायदा ये लोग क्या करते थे कि एक दूसरे के साथ कसम खा लेते थे कि नहीं बस मैंने कसम खा ली है, हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन नहीं होने देंगे। ये सब कुछ हो गया तो बहुत ही लाख लोग है ना वो मरने मारने पर उतर आए। तो अब जो है ना वो मसला ये हुआ कि अब ये तो यानी पूरा का पूरा जंग शुरू हो जाएगी। और आपको पता ही है थोड़े दिन पहले ही जो है उन्होंने जंग खत्म करी थी वो। अच्छा, इस मौके के ऊपर भी क्या हुआ कि इनमें एक आदमी थे बहुत बूढ़े, सबसे ज्यादा बूढ़े आदमी थे उस जमाने में, उनका नाम था अबू उमैया बिन मुगीरा, ठीक है। असल नाम उनका था हुजैफा, लेकिन उनकी कुनिया थी अबू उमैया बिन मुगीरा, ठीक है। ये जो थे ना नबी अलैहिस्सलाम की बाद में एक शादी होनी थी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से, ये उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के अब्बू थे, वालिद थे, ठीक है। तो इन्होंने ना ही केम अप विद दिस ब्रिलियंट आइडिया, अल्लाह ताला की तरफ से इनके दिल में एक ख्याल आया, इन्होंने ये आइडिया दिया सबको कि ये ऐसा करते हैं कि ना कल सुबह को जो सफा की तरफ एक डोर इन्होंने बनाया हुआ था, ठीक है ना, यानी उस जमाने में भी एक मस्जिद होती थी, बाकायदा बाउंड्री वॉल होती थी काबतुल्लाह के अराउंड, ठीक है, मस्जिद की जैसे बाउंड्री, तो वहां पे डोर्स थे, तो सफा की तरफ से जो है ना जो एक डोर है ना, तो वहां से जो भी बंदा दाखिल होगा ना सबसे पहले तो हम उससे पूछेंगे कि क्या करना है, तुम बताओ क्या करना है, कौन लगाएगा उस पत्थर, ठीक है। तो आपको पहले भी बताया ना कि ये लोग ना ये लोग बहुत कॉन्शियस होते थे अल्लाह ताला की मर्जी किस चीज के अंदर है, ठीक है। तो ना ये इन सारी चीजों को ना एज साइंस फ्रॉम अल्लाह देखा करते थे, ठीक है, कि भाई जो भी शख्स दाखिल होगा उससे हम पूछ लेंगे, उसको तो पता नहीं होगा कि क्या मसला चल रहा है, तो हम उसे पूछ लेंगे, तो वो जो है ना वही बात कहेगा जो अल्लाह ने उसके दिल में डाली होगी, तो फिर उसमें हमें अल्लाह की मर्जी भी पता चल जाएगी। तो इस तरह से ना ये जब भी जो है ना ये लोग वो लॉट्स भी ड्रॉ करते थे, है ना, वो कुरानंदाजी किया करते थे और बहुत सारे साइंस देखते रहते थे कि ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये हो गया। अभी जैसे वो अभी बात हुई ना कि वो परिंदे ने आकर के सांप को लेकर के चला गया, तो उसका मतलब ये है कि बस अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम ये काम करें। फिर उसी तरीके से आस दिन वायल के ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि ऐसा हो। इस तरह से ये लोग सोचा करते थे, ठीक है ना, देवर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं। तो बहरहाल इस तरह की इसने एक एडवाइस दी, तो सब तैयार हो गए कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम कल सुबह देखते हैं कौन शख्स सबसे पहले इस दरवाजे के थ्रू एंटर होता है, ठीक है। तो हुआ क्या फिर, सबको ही पता होगा कि अगली सुबह ये सारे के सारे इंतजार कर रहे थे कि कौन दाखिल होगा, तो नबी अलैहिस्सलाम दाखिल, ठीक है ना। तो अब ये जो सारा झगड़ा था ना नबी अलैहिस्सलाम वाज नॉट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना, ये जो सारी इनकी लड़ाइयां चल रही थी, इनकी बहस मुबाहसा चल, आप इसका हिस्सा नहीं थे, तो आप जो है ना वो अगली सुबह को एकदम ही जैसे अननोन तरीके से जो है वो एंटर हुए, ठीक है ना। इन लोगों ने जब नबी अलैहिस्सलाम को इस तरीके से आते हुए देखा ना, सारे के सारे खुश हो गए। क्या कहा उन्होंने, बकायदा हदीस की किताबों में लिखा हुआ है कि इन लोगों ने कहा हाजा मुहम्मदुल अमीन, हाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अमीन रज़ीना, हम खुश हैं इनके ऊपर, राइट। ये मोहम्मद हैं, ये तो ट्रस्ट वर्दी हैं, ये तो अमीन हैं, रज़ीना हाजा मोहम्मद अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। तो ये लोग इतना नबी अलैहिस्सलाम को पसंद किया करते थे, इतना ट्रस्ट किया करते थे कि खुश हो गए कि आप ना एंटर हो, ठीक है ना। तो बेहतरीन आदमी आ गया भाई, हमारा हमारे कबीले का बेहतरीन आदमी आ गया, हमारे शहर का बेहतरीन आदमी, ठीक है। तो अब इन्होंने जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि भी ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ हुआ है और आप बताएं कि क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह ताला ने बेहतरीन इसका सोल्यूशन डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई एक चादर लेकर, ठीक है, और उस चादर को ना फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पे रखने को कहा, और उस हजरे अस्वद जहां पड़ा हुआ था तो उसको उठा करके जो है ना वो उस चादर के ऊपर रखा गया, ठीक है। और जितने लीडर्स थे कुरैश के, जो कि ये काम खुद करना चाहते थे, उन सब से कहा कि तुम सब जो है ना वो चादर को अपने अपने तरफ से पकड़ लो और उसको उठा लो। ठीक है, अब वो हजर अस्वद जो है चादर के बीच में पड़ा हुआ है, और जितने सरदारान कुरैश है उन्होंने चादर को अपने अपने कॉर्नर से जो है वो पकड़ लिया। ठीक है, उठा करके जो है ना वो उस चादर को उस जगह पर लेकर के गए कि जहां पर के उस हजर अस्वद को लगाना था। अब वहां पर लगाया किसने? सारे सरदार जो है वो तो चादर को पकड़े हुए थे, अब कौन रह गए? नबी रह गए। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने ये जो स्पेशलिटी थी ना, ये खास चीज थी अपने महबूब अलैहिस्सलाम के लिए, खास करके रखी हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को चादर पर से उठाया और उसकी जगह के ऊपर माशाल्लाह लगा। ठीक है, सब पहले ही खुश थे, सब जो है वो इत्मीनान से अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हुआ। ठीक है, तो ये वाकया कब पेश आया था? जब आप जो है वो 35 ईयर्स के थे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी जिसका ताल्लुक जो है ना वो पिछली क्लास की हमारी एक डिस्कशन के साथ भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो क्या हुआ था, शायद आपने पहले नहीं सुना हो ये बात, कि जब इन्होंने ना अबू उमैया बिन मुगीरा ने जो ये एडवाइस दी थी ना, ठीक है, कि जो शख्स जो है वो पहले आएगा, अच्छा नहीं उस वक्त नहीं, बल्कि जब नेक्स्ट डे नबी अलैहिस्सलाम एंटर हुए ना और सारे लोग खुश हो गए कि हाँ भाई ये तो अमीन है और हम तो इनके ऊपर राजी हैं। ठीक है, तो उस वक्त जो है ना वो एक आदमी, अननोन आदमी, ठीक है, वो एकदम से आगे बढ़ा और उसने ये कहना शुरू कर दिया कि क्या हो गया तुम लोगों को भाई, तुम इतने बड़े बड़े लोग हो, तुम ये 35 ईयर्स के नौजवान से अपना फैसला करवाओगे, ये कौन होता है तुम्हारे फैसले करने वाला? ठीक है, तो ये आदमी जो था ना एक एकदम से एक नया बंदा था, कोई इसको जानता नहीं था। ठीक है, ये कौन था? ये इबलीस था। ठीक है, जो कि जिन है, सही है, काना मिनल जिन, वो तो जिन है। ठीक है, तो देखिए जिन जो होते हैं ना, शैतान, वो ऐसे जो है वो इंसान बन करके भी आ जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से वो बाकायदा इंसानों की बातों के दरमियान आकर के करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो सीरत में हम आगे और भी पढ़ेंगे, इस तरह के और भी कई वाकयात हुए जिसके अंदर इब्लीस जो है ना वो किसी इंसान की शक्ल में आ गया और उसने आकर के जो है ना वो बुरी बातें जो है वो लोगों को कहनी शुरू कर, इवन इंसान की शक्ल में। ठीक है, वैसे भी आइडियाज तो ऐसे भी डालते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इंसान शक्ल में भी आते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो काबतुल्ला के कंस्ट्रक्शन का मामला खत्म हुआ, और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वाकया जो हुआ वो फिर सबसे बड़ा वाकया जो कि आप की जिंदगी में और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाकया है, वो हुआ जब आप जो है फिर 40 ईयर्स के हुए। ठीक है, बल्कि क्लोज टू 40 ईयर्स के हुए, तो उस वक्त ये सारी चीजें शुरू हो गई कि नबी अलैहिस्सलाम को ना ये बात अच्छी लगने लगी अपने दिल के अंदर कि वो लोगों से जरा दूर रहना शुरू हो गए, अलग थलग। ठीक है, खलवत जिसको कहते हैं अरबी में, खलवत आप के लिए बहुत अच्छी हो गई, पसंदीदा हो गई। तो उसके लिए आप फिर क्या करते थे कि आप ने ना फिर एक जगह तलाश करी जो कि एक पहाड़ के बिल्कुल टॉप के ऊपर थी। ठीक है, ये पहाड़ कौन सा था? पहाड़ जबले नूर, इसका नाम है जबले नूर, बाद में लोगों ने इसका नाम जबले नूर रख दिया। और इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है ना वो एक इस किस्म की एक ऊंचाई सी है, इसी पहाड़ का हिस्सा है वो, लेकिन यूं करके जो लोग यहाँ से रियाज से स्पेशली या ताइफ के रास्ते से जो मक्का मुकरमा में एंटर होते हैं ना, तो जबले नूर जो है वो सड़क के राइट साइड पे सबको नजर आता है, बड़ा स्पेशल किस्म का पहाड़ है, डिफरेंट है ये बाकी सारे पहाड़ों से। ठीक है, तो इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर जो ऐसी प्रोजेक्शन बनी हुई है उसके अंदर एक छोटा सा गार है, उस गार को कहते हैं गारे हिरा। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो जगह अपने इस खलवत के लिए पसंद करी। आप अपने घर से निकला करते थे, कुछ खाने पीने की चीजें जो है वो ले लिया करते थे थोड़ी बहुत, वो भी ज्यादा नहीं, बस कुछ खुश्क रोटी होती थी और कुछ सालन वगैरह या कुछ सरसों का तेल, इस किस्म की चीज ले ली, और फिर वो लेकर के जो है वो गारे हिरा में चले आते थे। कभी वहां पर 3 दिन और 3 रातों तक रहते थे, कभी जो है वो 7 दिन 7 रातों तक वहां पे रहते थे, कभी जो है वो एक एक महीने तक भी वहां पे रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अकेले तने तनहा बस बैठना शुरू हो गए। ठीक है ना, गारे हिरा की एक बड़ी स्पेशल बात है, किसी को पता है गारे हिरा ही में क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे? और भी तो गार होते हैं पहाड़ों के अंदर, किसी और गार में क्यों नहीं बैठते थे? हाँ, एग्जैक्टली, गारे हिरा जो है ना वो ऐसा है, ऐसी लोकेशन पर है कि वहां से बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो काबतुल्ला नजर आता है, ठीक है ना, यानी कोई और पहाड़, कोई और दरख्त, कोई और चीज बीच में नहीं आती, बिल्कुल स्ट्रेट काबतुल्ला नजर आता है। तो नबी अलैहिस्सलाम के दिल में काबतुल्ला की भी मोहब्बत थी, अल्लाह ताला का घर है वो, ठीक है, तो ऐसे बैठते थे कि काबतुल्ला को भी देखते रहते थे और अल्लाह ताला के बारे में फिर सोचते भी थे और फिक्र करते थे, जिक्र जिस तरह से भी करते होंगे हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली क्या क्या करते, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये अराउंड यानी 35 ईयर्स के बाद जो है ना ये सिलसिला एग्जैक्टली कब शुरू हुआ ये तो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम कितने साल के हुए, 39 एंड अ हाफ, ठीक है, 39 ईयर्स और 6 मंथ्स, इसको कहेंगे 39 एंड अ हाफ, ठीक है। तो ये सिलसिला चल रहा था कब, वहां पे गारे हिरा के अंदर जाने का, खामोशी से बैठे रहने का, अकेले बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, जब 39 एंड अ हाफ ईयर्स को हुए तो फिर एक और भी चीज शुरू हो गई, इस अकेले बैठने के अंदर एक और भी चीज शुरू हो गई, वो क्या, वो ये हुई कि जब नबी अल्लाह सल्लल्लाहु वहां बैठे, अब सारा वक्त तो नहीं जागते ना, सो भी जाते थे वहीं पर, ठीक है, तो जब सो रहे होते थे ना तो नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब आने शुरू हो गए, ठीक है, ख्वाब आते थे, ड्रीम्स आते थे, और वो जो ख्वाब आते थे वो रुया सालेहा होते थे, यानी सच्चे ख्वाब होते थे, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम नींद में कोई चीज देखते थे और अगले दिन जो है ना वो चीज एग्जैक्टली वैसी हो जाती थी, ठीक है ना, इसको कहते हैं सच्चा ख्वाब, ठीक है। तो ये सच्चे ख्वाब जो है वो कितने अरसा रहे, 6 मंथ्स, 6 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुया सालेहा आते रहे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 40 ईयर्स के हो चुके थे, फिर उसके बाद वो वाकया पेश आया जिसका जिक्र इंशाल्लाह अगली बार, ठीक है। किसी को कोई सवाल अभी रह गया हो तो आप पूछ लें। ट्रू ड्रीम्स आरे हिरा, ठीक है, सही लिखा था आपने। किसी को कोई क्वेश्चन है, जो बड़े हजार हैं बरए मेहरबानी चाय खत्म करने में हमारे साथ तआवुन करें, ठीक है, कोई सवाल अगर नहीं है तो फिर क्लास को आगे।